Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, हर बार किसी न किसी सुंदर प्रसंग से हम शुरुआत करते हैं समाधान की, क्योंकि ये सुंदर प्रसंग, सुंदर बातें हमारे जीवन में यदि आ जाती हैं तो समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। कल भी जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि धर्म और आध्यात्म में अंतर ही यही है कि धर्म बाहरी स्वरूप है, हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी क्रियाकर्म हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है, अर्थात उन सभी अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक अच्छी बातें जीवन में नहीं होंगी, तब तक हम अंदर से शांत या एक सुकून की स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे और ना ही दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे। समाधान लगातार हमें अच्छी से अच्छी बातें सिखाता रहता है, प्रेरित करता रहता है कि हम अच्छाई के पथ पर चलें, प्रकाश की ओर चलें और जीवन को बेहतर से बेहतर बनाते चलें। क्योंकि संसार में यदि हमें भगवान ने भेजा है तो एक सुंदर उद्देश्य देके भेजा है, इसलिए भेजा है कि हम भी जीवन का आनंद ले सकें और दूसरों को भी आनंद प्रदान कर सकें। हमारी संस्कृति भी यही रही है, जियो और जीने दो। तो हम भी अच्छे से जिएं, दूसरों को भी अच्छे से जीने की प्रेरणा देते रहें और ये सीख लगातार हमें समाधान से आदरणीय भ्राता जी से प्राप्त हो रहा है। आइए आज की इस कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं, समाधान की शुरुआत करते हैं। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया
प्राता जी। अच्छा लगता है जब सचमुच एक गहरी बात हमें ज्ञात होती है कि हमें अब इन अच्छी अच्छी बातों को धारण करना है, क्योंकि सुनते तो आए हैं लेकिन जीवन में मेरे आ जाए वो चीज नहीं हो पाई है।
बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए जब तक मनुष्य इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उसे नैतिक बनना ही होगा, उसे आध्यात्मिक बनना ही होगा, अन्यथा ये विकास उसे विनाश की ओर ले चलेगा, ये विकास उसे टेंशन की ओर ले चल रहा है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ है, तो टेंशन बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गए, प्रेशर बढ़ गए। मनुष्य ने जीवन जीने का सुख लेना जैसे भुला दिया है, वो भाग रहा है, कहाँ जाएगा ये उसको पता नहीं है। इसलिए अब आवश्यकता है इन सुंदर चीजों को जीवन में अपनाने की, ताकि हम इस भौतिक विकास के साथ सच्चा आनंद, जो सच्चा आनंद है, उसको प्राप्त कर सके।
बिल्कुल व्रता जी, एक बात आ जाती है कई बार, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जब बातें सुनते हैं, जैसे हमारे कई दर्शक फोन करते हैं और कहते हैं जब तक चर्चा होती रहती है हम बैठते हैं सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही फील्ड में जाते हैं तो फिर से वही स्थिति हो जाती है। तो बातें तो बहुत अच्छी हैं, लगता है कि ये मेरे जीवन में हो, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि केवल मेरे जीवन में आ जाने से शायद समाज का परिवर्तन नहीं हो पाएगा और सभी लोग तो वैसे के वैसे ही हैं, तो यहाँ शायद व्यक्ति थोड़ा सा निराश हो जाता है और उन अच्छाइयों को सुनने तक ही सीमित रखता है, जीवन में लाने के लिए प्रयास नहीं करता।
माने बातें और बहुत सारी हैं, केवल ये नहीं कि मेरे बदलने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। मनुष्य की अपनी अनेक इच्छाएं हैं, संसार में कंपटीशन है, उसका जीवन जीने का एक लहजा बना हुआ है। मान लो वो कमाने की ओर है तो वो उस ओर एक लक्ष्य की ओर चल रहा है, अब कोई उसे रोक दे वहाँ से तो उससे वो होगा नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्किल है, कहीं गेम्स हो रहे हैं, देखिए वो भी एक चीज़ है आज। अभी इन सब में मनुष्य सोचता है कि अरे छोड़ो उन सब चीज़ों को, इसका आनंद लो, और वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पाता है। इसलिए जब वो कर्म क्षेत्र पर जाए तो सवेरे से ही अपने चित्त को आनंद से भर कर चले। मैं छोटी सी एक बात हमेशा कहता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति काम पे जाता है, चाय पिएगा, स्नान करेगा, भोजन करेगा, चार्ज किया ना अपने बॉडी को, वैसे ही सवेरे सवेरे अपनी मन बुद्धि को भी चार्ज करके जाए, फिर देखे जीवन जीने का आनंद।
बिल्कुल बिल्कुल, और सचमुच इससे एक परिवर्तन जैसे वो अनुभव करेगा तो इसे कंटिन्यू करना उसके लिए ईजी हो जाएगा। भ्राता जी, कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास भोपाल से आया है भ्राता जी, और ये कहती हैं कि मैं 50 वर्षीय गृहिणी हूँ, 5 वर्ष से मैंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है, घर में बच्चों की शादी 4 वर्ष पहले हुई, बहू है तो बहुत अच्छी, परंतु क्रोध बहुत ज़्यादा करती है, इतना ज़्यादा कि उससे सभी लोग परेशान हैं, वो इतना ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि सभी पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं। इस कारण से मेरा पुत्र अब डिप्रेशन में आने लगा है और शराब भी पीने लगा है, क्या करें कि घर में शांति हो, इससे मेरा भी जो योग है अब डिस्टर्ब हो रहा है।
बहुत ही एक ऐसी दयनीय स्थिति है, मैं सोचा करता हूँ उसने बेचारी ने स्वप्न देखे होंगे, बहू का मुंह देखूंगी, अब कहती होगी इसका मुंह देखने से तो भला कभी ना देखूं, वही अच्छा है। तो कैसे मनुष्य कितने बड़े बड़े स्वप्न देखता है कि घर में लक्ष्मी आएगी, भाई काम भी बढ़ जाएगा और घर में एक नया सदस्य आएगा, अपनी कुछ योग्यताएं लेकर आएगा, हमारे घर में और जो यहाँ का श्रृंगार है उसमें और चार चांद लग जाएंगे। मेरे पास भी ऐसे ही एक माता आई, कहा इतने जोर जोर बोलती है मेरी बहू, मैं जैसे उसे कहूँ कि बहू थोड़ा चलो बात ही करनी है, लड़ना ही है, थोड़ा धीरे तो लड़ लो, नहीं मैं सबको सुनाऊंगी तुम कैसी हो। अब उसको ये भूल जाता है तुम कैसी हो मैं कैसी हूँ, ये बिल्कुल भूल रहा है। तो लोग सुन जाते हैं अपनी छतों पे, आजकल तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, छतों पे आके देखने लगते हैं इनके घर में क्या हो रहा है भाई, और जितना लोग आते हैं उसको लड़ने का और उमंग आ जाता है। तो इन स्थितियों से बचना चाहिए। मैं पहले इन यंग अपनी बहनों को कहूँगा, जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसको यों इस तरह लड़ झगड़ के विषैला नहीं बनाओ। आप सब बुद्धिमान हैं युवक, हमारी बहनें और भाई सभी को कह रहा हूँ, आप सब वेल एजुकेटेड हैं, अपनी बुद्धिमानी को अब अपनी समझदारी में बदलो। घर में सुख चैन कैसे हो, आपस में प्यार कैसे बढ़े, हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं, ये कैसे हो, ये बहुत जरूरी है करना, अन्यथा क्या होगा। देखिए मैं सोच रहा था जब आपने ये बात मुझे बताई कि आखिर ये सास बेचारी जिसका लड़का डिप्रेशन में आ गया है, युवक जो कमाई का एक उनके मात्र साधन रहा होगा, शराब पीने लगा परेशान होके, अब जब ये बहुत तंग होगी तो आखिर ये क्या सोचेगी, भाई इस बहू को छोड़ो, उसके घर भेजो, डाइवोर्स करो, जो भी इसको लेना हो ले जाए, हमारे घर में सुख चैन तो हो, हमारा बच्चा जीवित तो रहे, फिर इसका जीवन कैसा होगा, कहीं इसके परिवार वालों को बुला ले, समाज वालों को बुला ले और इसकी सारी बातें बताए और कहे ले जाओ इसे, तो कैसा रहेगा, दो परिवार नष्ट हो जाएंगे, अशांति हो जाएगी, समाज को एक गलत संदेश जाएगा और हमारी एजुकेशन इससे बदनाम होती है, क्योंकि ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियाँ अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, कोई डिग्री लिए होती हैं, लेकिन जैसा मैं कहता आया हूँ कि हमारी एजुकेशन का ये एक फॉल्ट हो गया कि उसमें मनुष्य इगोइस्टिक होता जाता है, अभिमानी होता जाता है, वो नम्र भाव वाला नहीं होता, उसको ये नहीं होता हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्या हमारे पास है तो हम नम्र चित्त बने, हम रॉयल बने, हमारे चेहरों पर हमारी एजुकेशन की रॉयल्टी, उसकी एक सुंदर छाप कि हम बुद्धिमान हैं, ये रिफ्लेक्ट हो हमारे चेहरों से, ये नहीं होता है। इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है, ऐसे युवक जो भी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, बिल्कुल जो मैंने कहा एक ऐसा प्रेम की गंगा बहा दें अपने परिवारों में, जहाँ सबको जीने का मन करे, जहाँ सबका विकास हो, जहाँ सबका चित्त चैन पाए। अब इनके घर में ये समस्या है और ये माता जी 5 साल से ज्ञान योग का अभ्यास कर रही हैं, उसका भी डिस्टर्ब हो गया है बेचारी का, तो मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करता हूँ इनको करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो यही है कि ये अपने मन को शांत करें और ऐसा समझ लें कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक सीरियस केस आता है तो डॉक्टर कैसे चुस्त हो जाता, अपनी सारी जो नॉलेज है उसको जरा ले आता है बुद्धि में, अब क्या करूं, ये तुरंत मरणासन है, श्वास रुक रहा है, हार्ट अटैक हो गया बहुत ज़बरदस्त, अब मैं क्या करूं। वो अपने धैर्य को बनाए रखता है और वो सब उपचार प्रारंभ करता है जिससे उसका जीवन बचता है। हमारे हॉस्पिटल में कल ही एक ऐसा केस हुआ, एक पेशेंट बिल्कुल मेजर हार्ट अटैक और बस प्रभु कृपा ही थी कि वो जीवित रहा और डॉक्टर ने बहुत जल्दी उसको कंट्रोल में कर लिया, सब कुछ नॉर्मल कर दिया, 1 घंटे के अंदर ही सब कुछ ठीक कर लिया। तो ऐसी चीज़ों को जानते हुए इस माँ को चाहिए, सास को चाहिए कि अपने चित्त को शांत करे। मेरे पास भी एक पेशेंट आया है, अब मुझे इसे ठीक करना है, क्योंकि अगर ये अपने चित्त को विचलित कर लेंगे, अगर ये परेशान होने लगेंगे, क्योंकि मनुष्य रिएक्ट तो करता ही है ना, अब वो बार बार बुरा बोले तो इसका भी रिएक्शन तो हो ही जाएगा, तो दोनों क्रोध करेंगी तो दोनों की मनोस्थिति बिगड़ेगी, जहरीला हो जाएगा घर का माहौल, और बच्चा जो डिप्रेशन की ओर चला गया है, ऐसे में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि लो तुम ही रह लो इस घर में, हम तो चले। तो माँ को समझदारी पूर्वक कुछ उपाय करने हैं। पहला उपाय, अपने घर में 3 बार ये 20-20 मिनट योग अभ्यास करेगी, ताकि घर के वातावरण में शांति के वाइब्रेशंस फैलें। दूसरा काम इन्हें करना है, देखिए काम थोड़ा सा कठिन है पर इन्हें करना होगा, अपनी बहू को प्रेम देना ही है, प्रेम की दृष्टि से देखना है। और ये कैसे हो सकता है कि ये आत्मा है, ये भी भगवान की बच्ची है, प्रेम इसके भी अंदर भरा हुआ है, हो सकता है वो पहले से कहीं से परेशान रहकर आई हो, उसके माँ बाप ने कुछ उसे कष्ट दिया हो, फ्रेंड सर्किल में उसको अपमानित होना पड़ा हो, वो साथ लेकर आई है इसलिए इरिटेट है, अब उसका इरिटेशन किसी भी कारण से यहाँ बढ़ जाता है। तो प्यार की दृष्टि अगर वो सामने भी न दे सके तो जब वो सोई हो या दूर हो उसे आत्मिक दृष्टि से देखे, प्रेम की दृष्टि से देखे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, सवेरे 5 बजे जब वो सोई हो उसके लिए इन्हें 10 मिनट स्पेयर करना है, उसे आत्मा देखकर योग अभ्यास करके 10 मिनट उसे गुड वाइब्रेशंस दें। कैसे करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ, ये 2 संकल्प करके योग अभ्यास करें कि बाबा की सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर आ रही हैं, ये अभ्यास करके मुझ आत्मा से ये किरणें उस आत्मा को जा रही हैं, बस यहाँ से निकल रहा है फोकस उसको जा रहा है, और फिर उसको कुछ अच्छे संकल्प दे दें, यू आर ए पीसफुल सोल, शांत हो जाओ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम प्यार की प्रतिमूर्ति हो, तुम तो हमारे घर का श्रृंगार हो, हमारे घर की लक्ष्मी हो, तुम शांत हो, अब शांति और प्रेम बांटो। बस रोज ऐसे संकल्प उसे देंगे 21 दिन तक, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिव होता है, जागृत होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ये संकल्प रिसीव करता जाएगा और धीरे धीरे उसमें आत्म जागृति होगी, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ यदि ऐसा होने लगे तो क्या होगा, ये तो बुरी चीज है, तुम्हारे कारण अनेकों का दिल दुख रहा है, तुम्हारे कारण घर में अशांति हो गई है, ब्रिंग ए चेंज इन टू योर बिहेवियर। अब उसमें ये आत्म जागृति आएगी जिसकी बहुत जरूरत है, और हमें पूर्ण विश्वास है इन 3-4 उपायों से अवश्य बदल जाएगी।
बिल्कुल। अब बता जी, जो बेटे पे प्रभाव आ गया है उसके लिए फिर क्या किया?
हाँ, ये तो बहुत ही बुरी बात है, जरूर साइकोलॉजिकली यही हुआ है कि उसने तो सुंदर भविष्य के सपने देखे थे ना, लेकिन उसके सपने तो चूर चूर हो गए। कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, और ये क्या हो गया, हमारे घर में तो अशांति हो गई, अब इससे तो पीछा छूटना मुश्किल है, ये तो हमारे गले पड़ गई है, अब ये सोच सोच के वो डिप्रेशन में चला गया है,
अब क्या
होगा मेरा, पूरा जीवन ऐसे ही बीतेगा, कैसे होगा। ये सेंसिटिव नेचर वाले जो इमोशनल फीलिंग वाले हैं वो ज़्यादा करते, अन्यथा ऐसे भी पुरुष होते हैं कि मारपीट करेंगे, सीधी हो जाओ, नहीं तो मैं हूँ, नहीं तो निकलो यहाँ से, जाओ अपने घर, तो नहीं चाहिए हमें, ऐसे भी तो लोग होते हैं। फिर वो पुरुषों पे दोष आता है कि ये पुरुष लोग महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं, पर महिलाओं को भी तो अपने व्यवहार को सुंदर करना पड़ेगा ना, तो इसमें भी इसकी माँ को उसे योगदान देना पड़ेगा, पानी और भोजन चार्ज करके उसको खिलाना पड़ेगा, और बच्चे को थोड़ा सा ये अच्छी बातें करें, उसे जरा इस बात से निकालने के लिए कि ये सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये सब तो होता है और समाप्त हो जाता है, थोड़ा उसको मोटिवेट करें, अच्छे संकल्प दे, और कोई उसका अच्छा फ्रेंड हो उसकी भी सहायता ले कि इसको जरा एंटरटेन कराओ, इसको जरा जागृत करो, इसका विचार बहुत डेड हो गए हैं, ये इस तरह की फीलिंग में जा रहा है, उसको घुमाएं फिराएं, थोड़ा पिकनिक कराएं, थोड़ा उसको निकालें फिजिकली भी उन चीज़ों से, लेकिन योगदान चार्ज वाटर और फूड उसको बहुत मदद करेगा, और ये समय है जल्दी उसको संभाल लेने का, अन्यथा उसकी स्थिति अगर बिगड़ गई तो फिर कुछ किया नहीं जा सकेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब योग का अभ्यास ही विशेष करके इनकी माता जी को करना होगा दोनों के लिए ही, ताकि घर की स्थिति ठीक हो जाए। माता जी, हर एक घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है, या तो बचपन से है कह लीजिए, या जैसे शादी हुई और बहू आ गई, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याएँ शुरू हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे विशेष करके आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसी स्थितियों से बचने के लिए क्या विशेष पहले से ही किया जाए, ताकि घर का माहौल जैसे पहले शांतिमय था वैसे ही शांतिमय बना रहे।
हाँ, बहुत परिवारों में तो बहुत अच्छा वातावरण है, सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसा लगता है वो 5-7 नहीं है, एक हैं सब। सब एक साथ खाएंगे, एक साथ बात करेंगे, सब एक से होते हैं
जी।
तो वो परिवार तो बहुत ही भाग्यवान है। लेकिन जैसा ऐसे ही होता है कि ऐसे सुंदर परिवारों में भी कोई एक आत्मा आकर सबका सुख छीन लेती है, ये बहुत जगह आजकल होने लगा है। भारत में ये सब बहुत कम था, लेकिन पिछले 10-20 सालों में, ज्यादा नहीं मैं तो देख रहा हूँ, 5-7 साल से ये परिस्थिति ज्यादा बनती जा रही है। और जैसे मैंने कहा, एजुकेशन बढ़ी है, ईगो बढ़ा है, पैसा बढ़ा है, अहंकार बढ़ा है, मनुष्य की पद पोजीशन बढ़ी है, उसने अभिमानी बनाया है मनुष्य को, और इन मनोविकारों का भी फोर्स बढ़ता जा रहा संसार में
जी।
इसमें मैं तो ये भी कहूँगा, किसी का दोष भी क्या दें, ये कलयुग का प्रभाव है, जहाँ सारे विकार फुल फोर्स से हर मनुष्य पर जैसे अटैक करना चाहते हैं, जो कमजोर हैं वो इनके अधीन हो जाता है। तो ऐसे में ही अध्यात्म की जरूरत है, ऐसे में ही आत्मज्ञान की जरूरत है, ऐसे में श्रेष्ठ सत्संग की जरूरत होती है, कि पूरा परिवार कुछ अच्छी चर्चा करे, कुछ अच्छा सत्संग करे, ईश्वरीय महावाक्य सुने, थोड़ा योग अभ्यास करें। तो एक व्यक्ति अगर ऐसा है तो 5 व्यक्ति उसको बदल सकेंगे, नहीं तो क्या होता है, एक व्यक्ति का प्रभाव 5-7 लोगों पर पड़ता है, एक व्यक्ति हावी हो जाता है सबके ऊपर,
सब अशांत हो जाते हैं,
सब बुराई से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कलयुग का प्रभाव है कि अच्छाई वीक पड़ गई है, और ये जो असुरियता है ये शक्तिशाली बन गई है। तो इसको समाप्त करने के लिए ये अध्यात्म, ये आत्मा का ज्ञान, ये राजयोग की परिभाषा, ये राजयोग का अभ्यास, इस पर सभी को लाना होगा।
चलिए बेटा जी, दूसरे मेल की ओर लिए चलता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे परिवार में सुख शांति रहे, जैसे पहले रहा करते थे वैसे ही अब भी परिवारों में सुख शांति। दूसरा मेल बेटा जी हमारे पास आया हुआ है, ये कहते हैं कि हम दोनों कुछ ही समय से ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, पति पत्नी, परंतु हमारे घर में एक अद्भुत समस्या पैदा हो गई है। हमारी 3 साल की लड़की है जो इतना ज़्यादा क्रोध करती है कि पूरे घर में अशांति फैला देती है। अब हमें उससे डर भी लगने लगा है, तो क्या करें कि बच्ची भी शांत हो और हमारे घर में भी सुख शांति का माहौल बने।
देखिए, अगर ये बात लोग सुने तो कहेंगे 3 साल की बच्ची से डर रहे हैं लोग, 3 साल की बच्ची ने अशांति कर दी है। ये देखिए, जो कर्मों की गति को जानते हैं और जो पुनर्जन्म को अच्छी तरह पहचानते हैं, वो जानते हैं कि वो आत्माएं हैं जिनके विकर्मों का खाता बहुत ज़्यादा रहा है, जिनके पास इन मनोविकारों की अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित रही है पूर्व जन्मों में। एक ये बात, वो उनके साथ आ गए हैं यहाँ। दूसरी एक सूक्ष्म चीज है, हमारे सभी दर्शक इसको समझते हैं और आज भी समझने की कोशिश करेंगे, कि इस दंपत्ति ने, जिसके घर में इस कन्या का जन्म हुआ है, इस आत्मा को पूर्व जन्म में बहुत सताया है, उसके मन में इनके लिए क्रोध उबलता रहा था, लेकिन वो क्रोध करने की स्थिति में नहीं थी, बदला लेने की स्थिति में नहीं थी। हो सकता है ये हायर पोजिशन में रहे हों, वो इनका सर्वेंट हो, अभी ये उसको दबाते हों, सताते हों, बुरा बोलते हों, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, उसको नौकरी करनी है। उसके अंदर समाता गया, बदले की भावना बढ़ती गई। अब वो इनकी बच्ची बनकर आ गई है। अब देखिए, छोटी आयु से उसके वाइब्रेशन से इसको, इनको भयभीत कर रहे हैं, बच्ची भयभीत नहीं कर रही, उसके जो वायलेंट वाइब्रेशन हैं जो पूर्व जन्मों के हैं, कुछ भी घटा हो, उनको इन्होंने मारा हो, बहुत बुरी तरह से मर्डर किया हो, तो उसमें जो बदले के वाइब्रेशंस थे, वायलेंट वाइब्रेशंस उसमें भी रहे हों, वो तब काम नहीं किया, अब वो वायलेंट वाइब्रेशंस इनके घर में फैलने लगते हैं, और ये भयभीत हो जाते हैं। नहीं तो कोई समझ नहीं सकता कि 3 साल की बच्ची को क्रोध, उससे घर में अशांति, उससे सबको भय, ये कैसे हो सकता है। तो इसके निदान के लिए भी इनको कुछ उपाय करने पड़ेंगे
जी।
एक तो रोज सवेरे दोनों उठकर मेडिटेशन करने के बाद हाथ जोड़कर उस आत्मा से मन ही मन क्षमा याचना करें, हमने आपको पूर्व जन्मों में बहुत कष्ट दिया था, आप हमें क्षमा करें, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम आपसे सच्चे मन से क्षमा याचना कर रहे हैं, हे आत्मा शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ। ये करने के बाद 10 मिनट इसको गुड वाइब्रेशंस भी देने हैं, योग की विधि जो हम चर्चा करते ही आ रहे हैं, उससे इसको गुड वाइब्रेशंस देंगे तो इसका चित शांत होने लगेगा और जो वायलेंट फीलिंग पूर्व जन्मों से लेकर आई है इनके लिए बदले की भावना, वो धीरे धीरे शांत होगी। ये काम पहले ये 21 दिन करें, फिर देखें नेक्स्ट 21 दिन और जरूरत पड़े तो और 21 दिन और ऐसे ही रोज सवेरे ये अपनी बच्ची को, माँ अपनी बच्ची को 10 मिनट वाइब्रेशंस देगी, एनर्जी देगी उसके ब्रेन को
जी।
ब्रेन को चार्ज करना होगा क्योंकि उसका ब्रेन अब हाइपर एक्टिव है, क्रोध की अग्नि से तपता है, तो हो सकता है ऐसे में बच्ची की मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाए और ये भी हो सकता है कि उसका ब्रेन विक्षिप्त अवस्था में रहने लगे 8-10 साल की आयु से ही, वो और एग्रेसिव होते होते एक ऐसी स्थिति में हो जाए कि ना वो पढ़ सके ठीक से और उसका चित्त पुनः अशांत होने लगे, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी होगी फिर उसको रियलाइज भी तो होगा ना कई चीज़ें, अब दूसरे बच्चे पढ़ रहे होंगे उसका मन नहीं लगता तो ये उसको डिप्रेशन की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए 10 मिनट उसके ब्रेन को एनर्जी देंगी, जब वो सोई हो तब भी दी जा सकती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार याद करके सिर पर उसके हाथ रख देंगे। मान लो सिर पे हाथ रखने से वो रिएक्ट करती है तो थोड़ा सा पास, तो ये एनर्जी हाथों से उसके ब्रेन को जाएगी 1 मिनट, फिर दोबारा करेंगे 1 मिनट, ऐसा 10 मिनट सवेरे शाम दोनों टाइम कर दें और संकल्प करें इससे इसका ब्रेन नॉर्मल हो जाए, तो हमें विश्वास है जल्दी बच्ची नॉर्मल हो जाएगी और इनका योग भी सफल होगा और ये बच्ची को प्यार भी दे सकेंगे, अन्यथा आप तो प्यार दे ही नहीं रहे हैं ये प्यार भी दे सकेंगे और इनके घर में बहुत अच्छा माहौल भी हो सकेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बेटा जी, हमारी भी शुभकामना रहेगी कि जल्दी से ही सारी सिचुएशन बिल्कुल सॉल्व हो जाए, घर में शांति शांति रहे। अगला मेल प्रता जी हमारे पास आया है, ये कहती हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, 1 8वीं में और 1 11वीं में, दोनों की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, मुझे इनके भविष्य की बहुत चिंता है, क्या योग की शक्ति से इन्हें ठीक किया जा सकता है। आजकल बच्चे और युवाओं की ये बड़ी समस्या कि सारे दिन मोबाइल व्हाट्सएप ईमेल इन सब में लगे रहते हैं
जी। बस इसमें ये इनको पवित्र भोजन खिलाएं और योगदान करें, आधा घंटा जैसे मैंने पिछले केस में बताया, 20-20 मिनट 3 बार योग करें, उनको थोड़ी अच्छी सीख भी दें, थोड़े अच्छे प्यार भरे शब्दों में। माँ बाप क्या करते, आदेश देते हैं, ये क्यों कर रहे हो, छोड़ो इसको तुम्हारा मोबाइल छीन लेंगे, अब बच्चे फिर और रिवेंजफुल हो जाते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, इसलिए इनको पवित्र भोजन खिलाएं और योगदान करें और बहुत स्वीट लैंग्वेज में अपने को स्वमान में स्थित करके इनके भविष्य के लिए इनको सुंदर बात बताएं तो जरूर बच्चों के विचार में परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये समस्या बड़ी उग्र होती जा रही है। बहुत बच्चे जो कभी कभी तो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं वो लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी इन कामों में लगकर अपने कैरियर को नष्ट कर देते हैं, तो इनको इस चीज से बाहर निकाला जा सकता है।
बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा 1 8वीं में है, चलिए 11वीं वाले की तो बात और है, बच्चों को क्या छोटी उम्र में मोबाइल दिया जाना चाहिए, इस पे आपका क्या विचार है?
अब मेरा तो विचार ये है कि सारे स्कूल्स मोबाइल फ्री कर देने चाहिए सरकार को, कोई भी बच्चा वहाँ मोबाइल न ले जा सके, और माँ बाप को भी चाहिए कि इस माया से इनको दूर रखे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मोबाइल मुंह बाए खड़ी है सुरसा की तरह जो सबको अपने में समा लेना चाहती है।
जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रता जी। सच में समस्या तो ऐसी है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी क्या कहें चिंतन या चिंता होने ही लगती है कि पता नहीं बच्चों का क्या होगा। सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज भी बहुत सारी बातें और समस्याएं हमारे सामने रही हैं। बच्चों के अंदर एक प्रकार से जो नेगेटिविटी आती जा रही है, बाहर के प्रभाव के कारण कह लें, या बहुत सारी चीज़ें आजकल वो देखते हैं, सुनते हैं, उसके कारण भी अब एक ही चीज़ रह जाती है हमारे पास कि उन्हें हम अच्छे से अच्छे वाइब्रेशन दें। जैसे भ्राता जी लगातार प्रेरित करते रहते हैं कि घर का वातावरण भी इतना सुंदर हो, पॉजिटिव हो, भोजन भी इतना अच्छा चार्ज किया हुआ हो, पॉजिटिव हो, तो उनके मन में भी पॉजिटिविटी पैदा होगी, क्योंकि ये चीज़ तो हमें देनी होगी ना उन्हें। जैसे हम बच्चों को यदि स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो उस प्रकार का भोजन हम उन्हें देते हैं, या हमें किसी विशेष फील्ड में उन्हें भेजना होता है तो बचपन से ही वैसी तैयारी कराने लगते हैं। यदि हमें उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी भरनी है और इन सारी नेगेटिविटी से वो मुक्त रहें, अच्छाई की ओर बढ़ें, ये यदि हम देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो एटमॉस्फेयर भी तो हमें ही क्रिएट करना होगा। तो हम स्वयं भी अपने आप को पॉजिटिविटी से भरें, स्पिरिचुअलिटी से भरें और साथ ही उनके लिए भी एक ऐसा माहौल पैदा करें ताकि उनके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो जागृत हो सकें। वैसे भी कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान होता ही होता है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस इंसान को ज़्यादा भोजन खिला रहे हैं। अर्थात यदि अच्छे इंसान वाली बात है, उसे हम अच्छी अच्छी बातें दे रहे हैं तो अच्छा इंसान हमारे अंदर का जागृत होगा, और यदि बुरी चीज़ें जा रही हैं तो वो बुरा इंसान ज़्यादा प्रबल और हावी होता चला जाएगा, जो कि आजकल दिखाई देता है। इसीलिए हम अपने आप को भी बहुत अच्छी तरह से आध्यात्म से परिपूर्ण करें, राजयोग का सुंदर अभ्यास करें और बच्चों के अंदर भी इन्हीं अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करें ताकि आगे आने वाले समय में वो भी अच्छे इंसान बने और समाज में भी उनका नाम हो। क्योंकि समाज हमेशा ही अच्छे इंसानों को याद करता है, अच्छे कर्मों के कारण लोगों को याद करता है, और अच्छे कर्म हम तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर वो सारी अच्छाइयाँ विद्यमान होती हैं। तो अच्छाइयों की ओर बढ़िए और साथ ही समाज को भी अच्छा बनाइए, यही हमारी और समाधान परिवार की शुभकामना है। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।